एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने अपने प्रकाशन के साथ ही समकालीन अमेरिकी साहित्य में एक गहरी छाप छोड़ी।
जी,
आयोना मैथिस का पहला उपन्यास द 12 ट्राइब्स ऑफ हैटी।
बिल्कुल, 2012 में आया था ये।
हाँ, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अमेरिकी इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण दौर जिसे ग्रेट माइग्रेशन कहते हैं।
जी, अफ्रीकी अमेरिकियों का दक्षिण से उत्तर की ओर पलायन।
हाँ, उसी की पृष्ठभूमि में बुनी गई एक बहुत ही मार्मिक, एक विस्तृत पारिवारिक गाथा है।
और आयोना मैथिस आयोवा राइटर्स वर्कशॉप से निकली हैं। उनकी लेखनी में एक खास बात है।
क्या?
वो काव्यात्मक यथार्थवाद, मतलब पोएटिक रियलिज्म जिसे कहते हैं, और पात्रों के लिए गहरी सहानुभूति, वो महसूस होती है।
सही कहा। तो आज हम इसी उपन्यास की गहराइयों में उतरेंगे, इसकी कहानी, पात्रों के जटिल भावनात्मक सफर और इसके जो गूढ़ विषय हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल। और ये भी तो देखिए कि ओपरा विनफ्रे ने इसे अपने बुक क्लब 2.0 के लिए चुना था।
हाँ, उससे तो ये बेस्टसेलर बन ही गया था।
जी, लेकिन इसकी खासियत सिर्फ बाहरी नहीं है, ये उपन्यास अंदर तक असर करता है, पाठकों को झकझोरता है। ये ग्रेट माइग्रेशन को पृष्ठभूमि की तरह इस्तेमाल तो करता है, मतलब दक्षिण के नस्लीय आतंक और गरीबी से निकलकर उत्तर के शहरों की ओर जो पलायन हुआ।
हाँ।
पर कहानी का दिल उस पलायन के बाद की जिंदगी में धड़कता है, उम्मीदें कैसे टूटती हैं और उसका असर वो पीढ़ियों तक कैसे महसूस होता है।
आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, ये सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं है।
नहीं,
ये एक आंतरिक यात्रा है, या शायद यात्रा के अभाव की कहानी है। मतलब बाहरी हालात बदल गए, पर
अतीत के घाव, वो भावनात्मक बोझ, वो पीछा नहीं छोड़ते।
बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ क्या है इसका, और हैटी की कहानी कैसे शुरू होती है?
कहानी हमें ले जाती है 1923 में। हैटी शेफर्ड 15 साल की एक किशोरी है। अपनी माँ और बहनों के साथ वो दक्षिण के जॉर्जिया से भागकर फिलाडेल्फिया पहुंचती है।
जॉर्जिया से फिलाडेल्फिया, कारण?
कारण वही, दक्षिण में जो असहनीय नस्लीय हिंसा थी, गरीबी थी, जिसने उनके परिवार को बिखेर दिया था। उनके मन में उत्तर को लेकर एक सपना था, बेहतर जीवन, सुरक्षा, अवसर और सबसे जरूरी, इंसानी सम्मान।
हाँ, वो प्रॉमिस्ड लैंड वाली बात।
जी बिल्कुल, लाखों अफ्रीकी अमेरिकी उसी सपने के पीछे उत्तर की ओर खींचे चले आ रहे थे उस दौर में।
लेकिन क्या फिलाडेल्फिया वाकई वो वादा किया हुआ देश साबित हुआ? अक्सर अक्सर इन कहानियों में उम्मीद और हकीकत में एक फासला होता है।
होता है, और यहाँ भी था। उत्तर का जीवन भी, मतलब, चुनौतियों से खाली नहीं था।
अच्छा,
फिलाडेल्फिया पहुंचते ही 17 साल की कच्ची उम्र में हैटी का विवाह हो जाता है ऑगस्ट शेफर्ड से।
ऑगस्ट, उसके बारे में क्या कहेंगे?
ऑगस्ट आकर्षक है, जिंदा दिल है, शायद उसमें थोड़ी वो कलाकार वाली बात भी है, लेकिन वो बेहद गैर जिम्मेदार है।
अस्थिर है,
मतलब हैटी को जिस सहारे की जरूरत थी वो नहीं मिल पाया।
हाँ, वो क्षणिक खुशी तो देता है, पर वो मजबूत सहारा नहीं बन पाता।
और फिर उनके जीवन में वो घटना घटती है जो इस पूरी कहानी की नींव है और हैटी के चरित्र का केंद्र भी।
आप उन जुड़वा बच्चों की बात कर रही हैं, हैटी के पहले बच्चे?
हाँ, हैटी अपने पहले दो बच्चों को जन्म देती है जुड़वा, एक बेटा एक बेटी, नाम रखती है फिलाडेल्फिया और जुबिली।
फिलाडेल्फिया और जुबिली, नाम में ही कितनी उम्मीद है।
हाँ, जैसे उस शहर और उस आज़ादी का प्रतीक हो जिसकी तलाश में वो आई थी। लेकिन किस्मत,
क्या हुआ?
फिलाडेल्फिया की वो जमा देने वाली सर्दी, उनकी भयानक गरीबी और सही देखभाल, सही डॉक्टरी मदद का न मिलना, इन सब के चलते दोनों नवजात बच्चे गंभीर निमोनिया का शिकार हो जाते हैं और कुछ ही महीनों में उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है।
हे भगवान,
ये सिर्फ बच्चों की मौत नहीं थी, ये हैटी की उम्मीदों की मौत थी, उसके भविष्य की मौत थी।
मैं कल्पना भी नहीं कर सकते सघात की, एक माँ अपने पहले ही बच्चे दोनों एक साथ।
हाँ,
इसका हैटी पर क्या असर पड़ा? मतलब क्या वो पूरी तरह बदल गई?
पूरी तरह से, उसके वजूद को ही बदल दिया इस घटना ने। उपन्यास में बहुत मार्मिक ढंग से दिखाया गया है, ऐसा लगता है जैसे जैसे दुख ने हथौड़े की तरह वार करके उसके अंदर की सारी कोमलता को कुचल दिया हो।
दिल पत्थर का हो गया।
बिल्कुल, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, ये सब जिताने की उसकी क्षमता जैसे हमेशा के लिए जम गई। वो बस एक कठोर प्रैक्टिकल सर्वाइवर बन गई,
उत्तरजीवी।
हाँ, जिसका अब एक ही लक्ष्य था, अपने बाकी बच्चों को किसी भी कीमत पर जिंदा रखना। बस शारीरिक रूप से, भावनात्मक पोषण वो जैसे अब कोई मायने ही नहीं रखता था उसके लिए।
तो यहीं से उपन्यास की वो जटिल मातृसत्ता हैटी शेपर्ड उसका चरित्र आकार लेता है। उसे किसी खांचे में फिट करना बहुत मुश्किल है।
बिल्कुल, वो न तो विलन है न देवी माँ।
हाँ, वो बस एक ऐसी औरत है जिसे हालात ने बेहद कठोर बना दिया है। उसका मातृत्व कैसा था फिर?
उसका मातृत्व वो सुरक्षा तो देता था पर दम घूटू भी था। वो बच्चों के लिए खाना जुटाएगी, छत का इंतजाम करेगी, अनुशासन में रखेगी,
लेकिन
लेकिन गले नहीं लगाएगी, आंसू नहीं पोंछेगी, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश वो नहीं करेगी। उपन्यास में एक जगह ऐसा महसूस होता है कि उनकी माँ का प्यार एक रस्सी की तरह था, तकिया या आराम नहीं बल्कि एक कवच था जो अक्सर चुभता था।
उफ़, कवच जो चुभता था।
हाँ, उसका प्यार जरूरत पर आधारित था, चाहत पर नहीं। जिंदा रखना ही प्यार जताने का तरीका बन गया।
ये मातृत्व का एक बहुत ही शक्तिशाली और परेशान करने वाला चित्रण है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ जिंदा रख लेना ही काफी है?
बिल्कुल,
और इस भावनात्मक रेगिस्तान का उसके बाकी 9 बच्चों पर क्या असर हुआ? ये बच्चे ही तो हैं हैटी की 12 जनजातियां, है ना? हालांकि पहले 2 तो रहे नहीं।
जी, हैटी की ये जो भावनात्मक दूरी थी, उसने हर बच्चे की जिंदगी को अलग अलग तरीके से, लेकिन बहुत गहरे और अक्सर विनाशकारी तरीकों से प्रभावित किया।
कैसे?
हर बच्चा माँ के स्नेह के उस खालीपन से जूझता रहा, अपनी पहचान के लिए संघर्ष करता रहा। वो सब कहीं ना कहीं अधूरे रह गए, माँ के प्यार की उस छांव के लिए तरसते रहे जो उन्हें कभी मिली ही नहीं।
कुछ बच्चों की कहानियों पर बात करते हैं। उपन्यास की संरचना भी तो उन्हीं के इर्द-गिर्द है। हर अध्याय एक अलग बच्चे पर फोकस करता है।
जी हाँ, बिल्कुल। जैसे फ्लॉयड को लेते हैं, तीसरा बच्चा, वो बहुत प्रतिभाशाली है, संगीतकार बनना चाहता है।
संगीत उसकी आत्मा की आवाज है।
हाँ, लेकिन वो अपनी समलैंगिक पहचान के साथ भी जूझ रहा है, उस जमाने के रूढ़िवादी समाज में और अपने परिवार में भी। वो जिंदगी भर अपनी माँ की स्वीकृति, माँ की समझ के लिए तरसता रहता है जो उसे कभी नहीं मिलती। तो उसकी जिंदगी प्रतिभा और अकेलेपन का एक दुखद मेल बन जाती है। संगीत उसके लिए सुकून भी है और एक तरह का पलायन भी।
फ्लॉयड की कहानी पहचान के संघर्ष और पारिवारिक स्वीकृति की कमी को दिखाती है, और सिक्स उसका किरदार भी बहुत यादगार है।
हाँ, सिक्स असली नाम लॉरेंस था, छठा बच्चा। बचपन में बहुत करिश्माई, जिंदा दिल लड़का था वो।
फिर क्या हुआ?
बड़ा होकर एक प्रभावशाली उपदेशक बनता है, लोगों को अपनी बातों से मोह लेता है, लेकिन जवानी में ही वो एक गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता है। कुछ लोग सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। उसके वो धार्मिक उन्माद वाले या वास्तविकता से कट जाने वाले एपिसोड्स बढ़ने लगते हैं, लेकिन उसका परिवार, खासकर हैटी, उसकी हालत को समझ नहीं पाता या शायद समझना नहीं चाहता।
वो इसे बीमारी नहीं मानते।
नहीं, वो इसी शायद चरित्र की कमजोरी या कोई बाहरी असर समझते हैं। ये कहानी सिर्फ सिक्स की त्रासदी नहीं है, ये उस समय मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो अज्ञानता थी, जो कलंक था, उसका भी प्रतिबिंब है। उसे जरूरत थी सहारे की, पर मिला क्या? उपेक्षा और डर।
ये तो बहुत दुखद है। ऐसा लग रहा है जैसे हैटी का वो शुरुआती आघात एक लहर की तरह उसके बच्चों की जिंदगी में अलग अलग शक्लों में सामने आ रहा है।
बिल्कुल, कहीं अकेलेपन में, कहीं मानसिक अस्थिरता में।
रूथी की कहानी भी तो नशे की लत से जुड़ी है ना?
हाँ, रूथी हैटी की एक बेटी, वो 1980 के दशक की जो क्रैक महामारी थी, उस दौर में नशे के गंभीर लत का शिकार हो जाती है।
और क्या इसका संबंध भी माँ की भावनात्मक दूरी से जोड़ा गया है?
उपन्यास बहुत बारीकी से इशारा करता है इस तरफ कि उसकी लत सिर्फ सामाजिक माहौल का नतीजा नहीं थी, कहीं ना कहीं वो उस भावनात्मक खालीपन को भरने की एक हताश कोशिश थी जो उसे माँ से विरासत में मिला था। वो प्यार और अपनापन जो उसे घर में महसूस नहीं हुआ, उसे वो नशे में तलाश रही थी।
और फिर उसकी बेटी बेल, वो इस चक्र को तोड़ पाती है?
हाँ, बेल जो हैटी की पोती है, वो गायिका बनकर इस विनाशकारी चक्र को तोड़ने की कोशिश करती है, अपनी पहचान बनाने की, अतीत से मुक्त होने की कोशिश, लेकिन उसे भी कीमत चुकानी पड़ती है, एक तरह का भावनात्मक अलगाव, रिश्तों से दूरी।
और इन सब बच्चों के संघर्षों के बीच ऑगस्ट, हैटी का पति, वो कहाँ है? उसकी क्या भूमिका है इस पूरे नाटक में?
ऑगस्ट कहानी में है तो, पर एक स्थायी लेकिन अस्थिर उपस्थिति की तरह, आकर्षक, जिंदा दिल मगर गैर जिम्मेदार, बेवफा, परिवार की जिम्मेदारियों से भागने वाला।
तो वो हैटी का बोझ कम नहीं करता?
नहीं, अक्सर बढ़ाता ही है। उसकी अपनी कमजोरियां, उसकी वो पलायनवादी प्रवृत्ति हैटी के अकेलेपन और संघर्ष को और गहरा कर देती हैं। कहने को वो परिवार का मुखिया है, पर असल बोझ तो पूरी तरह हैटी के कंधों पर ही रहता है।
तो इन सभी किरदारों और उनकी कहानियों के जरिए आयोना मैथिस किन बड़े विषयों को छू रही हैं? ये सिर्फ एक परिवार की कहानी तो नहीं लगती?
इगत आघात, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा।
हाँ, कि कैसे एक पीढ़ी का दर्द, खासकर अगर उसे समझा ना जाए, सुलझाया ना जाए, तो वो अनकही तरीकों से अगली पीढ़ियों तक पहुंचता है।
बिल्कुल, हैटी के जुड़वां बच्चों की मौत सिर्फ उसकी अपनी क्षति नहीं थी, वो एक ऐसा घाव बन गई जिसने उसके बाकी सभी बच्चों के मन पर अपनी छाप छोड़ी।
सही। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय, वो ग्रीड माइग्रेशन का अधूरा वादा।
जी, उपन्यास दिखाता है कि उत्तर जाना नस्लीय हिंसा से मुक्ति तो लाया, पर वो कोई आर्थिक स्वर्ग नहीं था।
हाँ, सामाजिक समानता भी नहीं मिली।
हैटी और उसके परिवार को वहां भी गरीबी, ठंड, अलगाव और एक अलग, शायद ज्यादा छुपा हुआ पर गहरा नस्लवाद झेलना पड़ा।
उनके बच्चों में अक्सर ये भावना दिखती है कि वो कहीं के नहीं रहे, न दक्षिण के, न पूरी तरह उत्तर के।
हाँ, एक तरह का विस्थापन, अधूरी उम्मीदों का दर्द, जैसे कोई सोचता है हम उत्तर आजादी के लिए आए पर अपने भूत साथ ले आए।
और मातृत्व का चित्रण, वो तो असाधारण है, पारंपरिक माँ की छवि को पूरी तरह तोड़ता है।
जी, ये सवाल खड़ा करता है कि मुश्किल हालात में माँ होने का मतलब क्या है? क्या जिंदा रहने की लड़ाई में भावनाएं पीछे छूट जाती हैं?
हैटी का प्यार प्रैक्टिकल है, वो बच्चों को दुनिया की कठोर सच्चाइयों के लिए तैयार करना चाहती है, पर इस कोशिश में वो उन्हें भावनात्मक रूप से शायद अपंग बना देती है।
क्या सिर्फ जिंदा रखना काफी है? ये सवाल पूरे उपन्यास में गूंजता रहता है।
और फिर वो पहचान और अपनेपन की तलाश का थीम तो है ही।
हाँ, वो तो यूनिवर्सल है। हैटी का हर बच्चा अपनी माँ की छाया और परिवार के इतिहास के बोझ से आजाद होकर अपनी पहचान बनाना चाहता है।
वो सब अनदेखा महसूस करते हैं, समझे जाने, प्यार पाने की जरूरत महसूस करते हैं, जो घर में ही पूरी नहीं होती।
और अंत में ये उपन्यास प्रेम, उत्तरजीविता और हानि के बीच का जो तनाव भरा रिश्ता है, उसकी पड़ताल करता है।
हाँ, जैसे हैटी का अनुभव कहता है कि जब अस्तित्व का संकट हो तो प्रेम एक लग्जरी बन जाता है, या शायद खतरा भी।
एक विचार आता है कि प्रेम पर्याप्त नहीं है, प्रेम ही तुम्हें पहले मुसीबत में डालता है।
जिंदा रहने के लिए वो भावनात्मक कवच पहनना जरूरी हो जाता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है, रिश्तों की, खुशी की, इंसानियत की भी।
बिल्कुल।
उपन्यास की जो कथा शैली है और साहित्यिक तकनीक है, वो भी इन विषयों को उभारने में मदद करती है। इसकी संरचना थोड़ी अलग है ना, पारंपरिक नहीं है।
हाँ, ये लीनियर कहानी नहीं है, एपिसोडिक संरचना है, 12 अलग अलग पर जुड़ी हुई कहानियां या अध्याय कह सकते हैं।
हर अध्याय एक अलग पात्र पर केंद्रित।
जी, अक्सर हैटी के किसी बच्चे या पोते पर, और कहानी समय में आगे पीछे होती रहती है, जिससे कई दशकों का फैलाव कवर होता है। ये संरचना पाठक को पहेली के टुकड़ों की तरह अलग अलग नजरियों से परिवार की पूरी तस्वीर बनाने का मौका देती है।
और नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू का इस्तेमाल भी बहुत असरदार है। सीमित तीसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण है, पर हर अध्याय में बदलता रहता है। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि हर अध्याय में हम कहानी को उस खास पात्र के विचारों, भावनाओं और अनुभवों के जरिए देखते हैं। हम दुनिया को फ्लॉइड की आंखों से देखते हैं, फिर सिक्स की, फिर रूथी की, ऐसे।
और दिलचस्प बात यह है कि हैटी को हम शायद ही कभी सीधे उसके अपने नजरिए से देखते हैं।
हाँ, उसे ज्यादातर उसके बच्चों या पोते पोतियों की नजरों से देखा जाता है, एक दूर की रहस्यमयी कठोर हस्ती। ये तकनीक पाठक को वही अनुभव कराती है जो बच्चों को होता है, एक माँ जो है तो सामने पर भावनात्मक रूप से पहुंच से बाहर है।
और आयोना मैथिस की भाषा, उसकी क्या खासियत है?
उनकी भाषा कमाल की है, एक ही साथ काव्यात्मक भी है और बेहद यथार्थवादी, कठोर भी। वो भावनाओं और माहौल को उभारने के लिए बहुत शक्तिशाली बिंबों, इमेजरी का इस्तेमाल करती हैं। फिलाडेल्फिया की वो हाड़ कंपा देने वाली सर्दी, दक्षिण के वो जीवंत लेकिन दमनकारी संगीत स्थल, हेटी की रसोई की वो भारी बोझिल खामोशी।
हाँ, ये सब जहन में बस जाता है।
भाषा सीधी चोट करती है, भावनाओं को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखती है।
क्या उपन्यास में प्रतीकावाद, सिंबलिज्म का भी इस्तेमाल हुआ है?
हाँ, काफी गहरा प्रतीकावाद है। ठंड सिर्फ मौसम नहीं है, वो भावनात्मक ठंडक, अलगाव, जीवन की कठोरता का प्रतीक है।
और संगीत?
संगीत खासकर फ्लॉयड के लिए आत्मा की अभिव्यक्ति है, दर्द से पलायन है, पहचान का जरिया है। घर में पौधों का मुरझाना अक्सर भावनात्मक मौत या किसी अपने के खोने का संकेत देता है।
और वो जुड़वा बच्चों के नाम, फिलाडेल्फिया और जुबली?
जी, वो अपने आप में उत्तर की आशा और उसके टूटने के शक्तिशाली प्रतीक है।
कहानी का जो भावनात्मक चरमोत्कर्ष है, क्लाइमैक्स, वो कहाँ आता है? क्या हैटी और उसके बच्चों के बीच कभी कोई समझ या सुलह का पल आता है?
उपन्यास का सबसे मार्मिक और अहम पल आता है आखिरी अध्याय में। शीर्षक है साला।
1980।
हाँ, कहानी अब हैटी के बुढ़ापे पर केंद्रित है। वो बीमार है, अकेली है। उसकी पोती साला, जो हैटी के बेटे फ्रैंकलिन की बेटी है, तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। वो उसकी देखभाल के लिए उसके साथ रहने आती है।
अच्छा, साला उस पीढ़ी से है जो हैटी के सबसे कठोर सालों के सीधे असर से कुछ बची रही है।
जी।
तो साला के आने से क्या बदलाव आता है?
साला शायद अपनी उम्र की वजह से या थोड़ी भारी होने की वजह से वो सवाल पूछने का साहस करती है जो हैटी के बच्चे शायद कभी नहीं पूछ पाए।
क्या सवाल?
वो अपनी दादी की भावनात्मक दूरी पर, उनके बच्चों के प्रति उनकी कठोरता पर सीधे सवाल करती है। वो जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ। ये टकराव, ये सीधी बातचीत दशकों से हैटी के चारों ओर जो बर्फ की दीवार खड़ी थी उसे तोड़ने का काम करती है।
तो क्या है हैटी आखिरकार, कुछ कहती है अपने दिल की बात?
हाँ, उस टकराव के पल में सालों का दबा हुआ दुख, वो बांध टूट जाता है। हैटी पहली बार, शायद अपनी जिंदगी में पहली बार, अपने खोए हुए जुड़वा बच्चों फिलाडेल्फिया और जुबली के लिए अपना अथाह दर्द शब्दों में बयां करती है।
क्या कहती है वो?
वो साला से लगभग टूट कर कहती है, मतलब भाव ये है कि मेरे दो बच्चे थे, वे मेरा सबसे अच्छा हिस्सा थे। जब वे मर गए तो मुझ में जो कुछ भी अच्छा और नरम था वो सब उनके साथ ही मर गया।
ओह, ये तो दिल दहला देने वाली स्वीकारोक्ति है।
हाँ, चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली।
ये पल यकीनन कहानी का भावनात्मक केंद्र है। ये पूरी तरह सुलह या माफी का पल भले न हो, पर ये मानवीय जुड़ाव का, गहरी पीड़ा की अभिव्यक्ति का, और शायद देर से ही सही एक दूसरे को समझने की शुरुआत का पल है।
जी, ये दिखाता है कि संवाद चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, घावों को भरने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।
और ये भी संकेत देता है कि शायद आघात के इस दुष्चक्र को तोड़ना मुमकिन है, भले ही बहुत देर हो चुकी हो।
बिल्कुल, इस उपन्यास को पढ़ना एक गहरा भावनात्मक अनुभव है। आसान नहीं है, कई बार बहुत दर्दनाक भी लगता है।
पाठक हैटी और उसके बच्चों के प्रति सहानुभूति, निराशा, गुस्सा, समझ, सब कुछ महसूस करता है।
हाँ, मिली जुली भावनाएं। ये हमें किसी के व्यवहार को तुरंत जज करने के बजाय उसके पीछे के कारणों को देखने के लिए उकसाता है।
हाँ, ये निश्चित रूप से प्रेम, शक्ति, परिवार, उत्तरजीविता, इन सब के बारे में हमारी बनी बनाई धारणाओं को चुनौती देता है।
सोचने पर मजबूर करता है कि सर्वाइवल की, जिंदा रहने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है।
हैटी ने बच्चों को शारीरिक रूप से तो बचा लिया, पर क्या उसने उनकी आत्मा को मार दिया? इसका कोई आसान जवाब नहीं है।
नहीं, उपन्यास हमें विरासत के बोझ, अपने माता पिता को समझने की हमारी कोशिशों और अतीत के चक्रों से आजाद होने की कठिन संभावना जैसे सवालों के साथ छोड़ देता है।
अंत में हैटी के प्रति कोई जजमेंट नहीं रहता, बल्कि
के लिए एक दर्द महसूस होता है। वो सब उस अंधेरे में रोशनी की तलाश के प्रमाण है जो उन्हें विरासत में मिला था।
ये उपन्यास हमें यही सिखाता है कि कैसे इतिहास और समाज का बड़ा आघात व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्तों में घुल जाता है और उन्हें पीढ़ियों तक आकार दे सकता है।
और यह भी कि सबसे अंधकारमय परिस्थितियों में भी समझ और मानवीय जुड़ाव की एक क्षणिक किरण, चाहे कितनी देर से क्यों ना आए, उपचार की उम्मीद जगा सकती है।
ये संवाद यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।